आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
कल एंजक डे पर देश भर में डिगर्स को याद किया गया, लेकिन मेलबर्न में एंजक डे सर्विस में बाधा डाली गई। वियतनाम युद्ध में ऑस्ट्रेलियाई नर्सों को एक स्थायी स्मारक द्वारा सम्मानित किया गया और NRL ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक संभावित टीम की झंडी दिखाई। नमस्कार, सप्ताह भर की खबरें विस्तार में और मैं हूं अनीता बरार। कल 25 अप्रैल को मेलबर्न में श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस पर एनजेक डे सर्विस में एक छोटे समूह द्वारा बाधा डाली गई। आयोजित सेवा के दौरान बुनुरोंग के बुजुर्ग मार्क ब्राउन द्वारा वेलकम टू कंट्री के समय भीड़ के सदस्यों ने हूटिंग की। इस घटना की RSL विक्टोरिया ने तुरंत निंदा की और कहा कि ये बाधा डालना गंभीर कार्यक्रम के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत था। वियतनाम युद्ध में नर्स के रूप में काम करने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को युद्ध की समाप्ति के 50 से अधिक वर्षों के बाद पहली बार स्थायी स्मारक से सम्मानित किया गया है। मध्य क्वींसलैंड में मॉरविन ऐतिहासिक परिसर में ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक से लिया एक स्थायी फोटोग्राफिक संग्रह प्रदर्शन है, जो वियतनाम में सैनिकों की देखभाल करने वाली ऑस्ट्रेलियाई नर्सों के काम और दैनिक जीवन को दर्शाता है। 1964 और 1972 के बीच 353 ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने वियतनाम में नर्स के रूप में काम किया। वियतनाम नर्स मेमोरियल की क्यूरेटर एनाबेल ब्रेले का कहना है कि युद्धों में महिलाओं की भूमिका पर हाल ही में ध्यान दिया जाने लगा है।
Most people don't know about them. I think people are starting to learn about the World War One and Two nurses in a way that they didn't before, and the Boer War nurses, Crimea, etc. But the nurses who went to Vietnam just have flown completely under the radar.
बृहस्पतिवार 24 अप्रैल को गठबंधन के नेता पीटर राटन ने वादा किया कि अगर गठबंधन चुनाव जीतती है तो गाजा से भागकर आए वीजा प्राप्त करने वाले फिलिस्तीनियों की सुरक्षा मंजूरी का पुनर्मूल्यांकन होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता परीक्षा में यहूदी विरोधी प्रश्न डालने और पश्चिमी यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का भी वादा किया। ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन एडवोकेसी नेटवर्क ने नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वो इसराइल के लिए होती वैध आलोचना को दबाएंगे, लेकिन टाटन का कहना है कि ये सीमा सुरक्षा पर सख्त होने के बारे में है।
Our nation is the greatest in the world. We welcome migrants coming to our country. We have the most successful migration program, but we're not going to compromise on those settings which provide screening of people who are coming in from a war zone.
People from Gaza, though, were vetted when they exited the Rafah border crossing by Israel and then Home Affairs as well. So do you not trust our security agencies or our allies?
We'll take advice and we'll conduct proper security checks.
प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र सिडनी के एशफील्ड सबब में एक मतदान केंद्र पर 17 वर्षीय किशोर पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हैट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति को कथित तौर पर मुक्का मारने का आरोप लगाया गया। 79 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर गंभीर लेकिन स्थिर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और अलग घटना में 31 वर्षीय व्यक्ति पर सिडनी के उत्तर पश्चिम मैक्वारी पार्क में कई स्वयंसेवकों के प्रति कथित रूप से आक्रामक व्यवहार करने के बाद धमकाने का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी ने कथित हमलों की निंदा की है।
There's no place for violence in our political system. We're a democracy. It's important that people engage in a respectful way.
ग्रेट बैरियर रीफ में नवीनतम स्नैपशॉट से पता चला है कि मैरीन पार्क के उत्तरी क्षेत्रों में कोरल की व्यापक रूप से ब्लीचिंग हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाई सर्वेक्षण और पानी में निगरानी से पता चला है कि सर्वेक्षण किए गए 162 तटीय और मध्य शेल्फ में से 41% में मध्य से उच्च ब्लीचिंग प्रचलन दर्ज किया गया है, जिसका मुख्य कारण कोरल का औसत से अधिक तापमान के पानी में लंबे समय तक संपर्क में रहना है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के सर्वेक्षण के साथ ही सामने आई है। कैरेबियन स्टीयरिंग कमेटी की सह अध्यक्ष मेलनी मैकफील का कहना है कि रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के कोरल का हानिकारक ब्लीचिंग समुद्र के 84% रीफ तक पहुंच गया है, जो दर्ज इतिहास में अपनी तरह से सबसे तीव्र घटना है।
We've just reached 1.5 degrees in the ocean, and you see the repercussions. It's unprecedented, very alarming. So I think people really need to recognize what they're doing, you know, by the inaction. It's the kiss of death for coral reefs.
सप्ताह के शुरुआत में 21 अप्रैल को कैथोलिक चर्च के प्रमुख और 1 अरब से अधिक लोगों के धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। विनम्रता, करुणा और नेतृत्व में सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले ये पहले लैटिन अमेरिकन पोप थे। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज 26 अप्रैल को सेंट पीटर्स बेसिलिका में होगा। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सैम मॉस्टिन और व्यापार मंत्री डॉन फेरल पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में गणमान्य व्यक्तियों के रूप में शामिल हो रहे हैं। मुख्य चुनाव दिवस से पहले ही हजारों लोग मतदान केंद्रों पर अपना मत डालने के लिए पहुंच चुके हैं। 23 अप्रैल को ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग ने बताया कि 5,42,000 लोगों ने शुरुआती मतदान केंद्रों पर अपना मतदान किया है। ये 2022 के चुनाव में पहले दिन के मतदान से 70% अधिक है। चुनाव आयोग अधिकारियों ने दूरस्थ और अलग थलग समुदायों का भी दौरा किया है, जिसमें लिंगियारी की सीमांत सीट पिरलांगिम्पी भी शामिल है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का अवसर मिले। इस मतदाता ने NITV को बताया कि उसे क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने की उम्मीद है, चाहे कोई भी जीते।
Hopefully the government will, you know, change their mind and bring some money to the TVL and like I said, the roads, housing. We live in an overcrowded house. Move those COVID containers, so that way when there's COVID, we get to spend more times at our homeland rather than in our community.
व्हाइट हाउस ने गलत तरीके से एल साल्वाडोर में निर्वासित किए गए एक व्यक्ति को वापस भेजने से इनकार कर दिया है। अमेरिकन कैदियों को वहां रखने का विवादास्पद सौदा है। किनमार अब्रेगो गार्सिया को मार्च में निर्वासित कर दिया गया था, जबकि 2019 के एक न्यायालय के फैसले ने उन्हें निष्कासित किए जाने से बचाया था और सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट का कहना है कि गार्सिया को कभी भी वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
The basic fact that he was illegally inside our country and had a lawful deportation order made him subject to removal back to his home country of El Salvador. And if he ever ends up back in the United States, he would immediately be deported again. Nothing will change the fact that Abrego Garcia will never be a Maryland father. He will never live in the United States of America again.
और खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलियाई रग्बी लीग आयोग ने कथित तौर पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से एक टीम के लिए सहमति बनाई है और NRL पर्थ में विस्तार कर सकता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर रॉजर कुक की पेशकश का अर्थ है कि 2027 में प्रतियोगिता के लिए पर्थ बियर के रूप में जानी जाने वाली टीम के लिए उम्मीद बन गई। लेकिन प्रीमियर का कहना है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है।
We continue to have those negotiations. We haven't had a formal response from the NRL. I assume they have a range of processes they need to go through to consider anything in relation to these conversations. I will say the conversations are positive and we continue to look forward to those discussions continuing.
और इसी के साथ साप्ताहिक की समाप्त हुई।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने? इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।